പരിഹന്താനം നമോ സിദ്ധാനം നമോ ആയിരിയാണം നമോ ഉവച്ഛായാണം നമോ ലോയി സൗവസാഹൂണം ഈശോ പഞ്ച നമോയാരോ സൗവ പാവപണാസനോ മംഗളാണം ച സവേഷിം പഠമം ഹവൈ മംഗളം പഠമം ഹവൈ മംഗളം. പഞ്ച പരമേശ്വരി ഭഗവാൻ കീ അഹിംസ പരമോ ധർമ്മ കീ ആചാര്യ ഗുരുവർ ശ്രീ വിദ്യാസാഗർ മുനി മഹാരാജ് കീ जिनेन्द्र भगवान का प्रतिपादित जिन शासन अनादि से इस संसार में संसारी प्राणियों को कल्याण करता चला आ रहा है और भविष्य में अनंत काल तक यह पवित्र शासन अपनी पावनता से अपनी पवित्रता से विख्यात रहते हुए ही सदा सदा काल के लिए संसार से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले संसारी प्राणियों को कल्याण करता रहेगा। धर्म का अभाव कभी नहीं होता। ढाई द्वीप के अंदर कहीं न कहीं सतत विद्यमान रहता है। इसकी पहचान हम अपने नमोकार मंत्र के माध्यम से करते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं और 3.9 करोड़ मुनियों की वंदना हम करते रहते हैं। ये मुनि महाराज धर्म के आधार हैं। ये मुनि महाराज धर्म के आधार स्तंभ होने के साथ साथ साक्षात धर्म ही हैं। अष्टपाहुड़ आदि ग्रंथों में कुंदकुंद आचार्य जैसे महान आचार्यों ने इस बात की चर्चा की है। प्रश्न आया धर्म कहां है, तो उन्होंने एक ही शब्द में कहा धर्म निर्ग्रंथ मुद्रा के भीतर ही होता है। निर्ग्रंथ मुद्रा ग्रंथ यानी परिग्रह, निर यानी निषेधवाचक शब्द है नहीं, जहां पर परिग्रह नहीं है ग्रंथ नहीं है उनको निर्ग्रंथ कहते हैं। निर्ग्रंथ जो होते हैं उनके लिए ये ग्रंथ भी ग्रंथ ही लगते हैं। ये ग्रंथ भी ग्रंथ ही लगते हैं क्योंकि वो निर्ग्रंथ हैं। इसका नाम ग्रंथ रखा गया। शायद इसलिए रखा हो कि मुनि इसको भी त्यागते हैं। मुनि महाराज के पास ये होना भी शोभा नहीं देता। ग्रंथ होना, और इसीलिए इसका नाम ग्रंथ पड़ गया। नहीं मालूम इस वस्तु का किसने ग्रंथ ऐसा नाम रखा। इतिहास की ओर जब चिंतन के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो समझ में आता है इसका नाम भगवंतों ने ही रखा है। सारे दुनिया के जो व्यवहार चलते हैं ये भगवंतों की देन है। ऋषभनाथ भगवान ने केवल धार्मिक उपदेश ही नहीं दिया जनता को, गृहस्थ अवस्था में उन्होंने संसार जीने की कला भी सिखाई। संसार की बातें भी समझाना पड़ा। तुमको किस तरह से भोजन बनाना चाहिए ये भी सिखाया, किस तरह से खाना चाहिए ये भी सिखाया, कितने समय के भीतर भीतर खाना चाहिए बनाए हुए भोजन को यह भी बताया। नहीं बताया? आपको कैसे मालूम है? महाराज अभी मालूम पड़ा है इसलिए हम बता रहे हैं कि भगवान ने ही बताया है। कर्म भूमि का प्रारंभ किससे हुआ? कर्म भूमि में रहने वाले इस जनता के लिए सबसे पहला सांसारिक जीवन और धार्मिक जीवन जीने की कला को किसने सिखाया? इस प्रश्न का उत्तर जैन ग्रंथ पढ़ने वाले स्वाध्यायी लोग यही कहते हैं, महावीर नहीं कहते, पार्श्वनाथ नहीं कहते, अजितनाथ नहीं कहते, नाम आता है आदिनाथ का। आदिनाथ भगवान ने सिखाया, तो उन्होंने जब ये सारी बातें सिखाई है तो इस चीज को ग्रंथ कहना, ये आदिनाथ भगवान के द्वारा उपदेशित हुआ कि अनंतर के तीर्थंकरों के द्वारा उपदेशित हुआ? लघु भाषाएं 500, क्या 700? 700 लघु भाषाएं और 18 महाभाषाएं, 518 भाषाएं हो गई है। इन सारी भाषाओं का जन्मदाता, इन सबको सिखाने वाले, इन सबको बतलाने वाले वे भी वे ही हैं, जो आदि में नाथ हो जाते हैं, महान हो जाते हैं, इनके स्वामी बन जाते हैं, इनके अधिपति बन जाते हैं, इनके मालिक बन जाते हैं। उन्हीं का नाम नाथ तो है, नाथ है ने मालिक। आदि में संसार जीने की कला को और धर्ममय जीवन जीने की कला को जिसने सिखाया उस महान व्यक्ति का नाम ही है आदिनाथ। आदि इस युग के आदि, कर्म युग चल रहा है। एक अवसर्पिणी के भीतर तीन भोग भूमियां आती हैं और इसके उपरांत तीन काल जो आते हैं वो कर्म भूमि कहलाती है। कर्म भूमि का सेकंड काल चल रहा है, द्वितीय नंबर का, तृतीय आने वाला है। अवसर्पिणी समाप्त होने के बाद कर्म भूमि के तीन काल समाप्त होंगे, चौथा चला गया है, पांचवा जा रहा है, छठा आने वाला है, अवसर्पिणी समाप्त होगा इसके उपरांत। उत्सर्पिणी प्रारंभ होगा, उत्सर्पिणी का प्रारंभिक दशा भी कर्म भूमि की दशा है, भोग भूमि की तो है ही नहीं। फिर एक कर्म भूमि आएगी, उसके बाद एक कर्म भूमि और आएगी, उसके बाद एक कर्म भूमि और आएगी, इसके उपरांत पुनः पूर्ववत ज्यों का त्यों यहां पर भोग भूमि आएगी। भोग भूमि के छह काल और कर्म भूमि के छह काल होते हैं। हम किस काल में हैं अभी? हुंडाव सर्पिणी काल में हैं, और ये हुंडाव सर्पिणी काल काल के दोष का नाम है, पर है काल का नाम अवसर्पिणी काल। इस अवसर्पिणी काल में अनहोनित घटनाएं, दोषपूर्ण घटनाएं जो घटती हैं, उस कारण से इसी अवसर्पिणी काल को हुंडाव सर्पिणी काल ऐसा नाम पड़ा। पर काल तो काल है, काल है, काल क्या करता है? चलता है, चलने में चलने वालों को सहयोग देता है, इसलिए इसको काल कहा है। कन्नड़ भाषा में काल शब्द अलग अर्थ रखता है, मराठी में इसको क्या कहते हैं? पांव को पाय कहते हैं। अगर इस काल को नहीं समझोगे ना, इस पाय को नहीं समझोगे, और ये जो चला रहा है सबको, इस काल को नहीं समझोगे, इस काल को नहीं समझोगे, कन्नड़ में काल, वो भी काल, ये भी काल, हाँ, ये भी काल और ये भी काल, इसको नहीं समझोगे तो बहुत बड़ा अपाय है पाय के लिए और काल के लिए, बहुत बड़ा अपाय है। जो काल को नहीं जानता वो काल का कवलित होकर के चला जाता है, कहां भटकेगा इसकी कोई संभावना नहीं रहती। हम बचपन से वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं, हमारे में जाने की शक्ति है, और उस काल में ले जाने की निमित्तता रूप शक्ति है। हम कब से हैं यहां संसार में, जरा विचार तो करो। अनादि से, आदिनाथ भगवान को तो हमने आदिनाथ कहा, लेकिन वस्तुतः तो वो आदिनाथ नहीं, हम भी आदि आदि क्या है, नाथ मत कहो, हम आदि अनाथ हैं, वो आदि नाथ हैं और हम अनादि अनाथ हैं। हमारा कोई नहीं, दर दर भटक रहे हैं, कोई शरण नहीं दे रहा है। अनाथ कौन है और नाथ कौन, इसी को तो समझना आवश्यक है। नाथ वह होता है जो अपने को समझ गया वो नाथ बन जाता है, और जो अपने को नहीं समझता वो अनाथ रहता है। नाथ यानी मालिक, नाथ यानी वह व्यक्ति जिसके पास जो होना चाहिए वह है, उसका अधिपति है, वो सबका नाथ है। इस युग के आदि में आदि नाथ हुए, वो नाथ इसलिए हुए कि उनके पास जो होना चाहिए था वो था, इसलिए नाथ कहलायो, और हमारे पास जो होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए हमारा नाम नाथ न होकर अनाथ 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 अनाथ, आज तक हम अनाथ रहे। ये ही अनाथ जब नाथों की शरण में जाते हैं, ये ही अनाथ जब नाथ को समझकर स्वयं नाथ बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो धर्म का पुरुषार्थ शुरुआत होता है। जिन्हें इंद्र भगवान का शासन अनादि है, कल्याण कर रहा है, करता आया है, संसारी जीवों का कल्याण करता रहेगा। ये जिन शासन, पवित्र शासन क्या है? और कुछ नहीं, अपने आत्मा की पवित्र दशा का नाम ही जैन शासन है। हमारी आत्मा की शुद्धिकरण का नाम ही तो जिन शासन है। जिन बनने से पहले हम जैन बनते हैं, जैन बनकर जिन बनते हैं, जिन बनने के पश्चात फिर दिन नहीं गिनते। जिन बन गए तो दिन गिनने की जरूरत नहीं, अनंत काल के लिए, अनंत काल तक हम सुखी बन जाएंगे। दुखी व्यक्ति दिन गिनता है, रात और दिन दोनों गिनता है, क्योंकि इनके जीवन में रात है, इनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। अनाथ बनकर रात में जीवन को जीने वाले इन संसारी प्राणियों को उस नाथ ने जो मार्गदर्शन दिया है, उस मार्गदर्शन के अनुसार यदि कोई चलने लगता है तो वह जिन बनने से पहले जैन बनता है, और जैन बनकर जिन बनता है, जिन बनने के बाद दिन नहीं गिने जाते और कल्याण अपने आप हो जाता है। इसी का नाम जैन शासन है। इस संसार में संसारी प्राणी मोक्ष कब से चले जा रहे हैं, कब से मोक्ष जा रहे हैं? अनादि से। तो अनादि से जिन तो बनते ही आए हैं और जैन भी बनते आए हैं। लोग पूछते हैं, साधारण ज्ञान वाले, महाराज जैन शासन इतना पवित्र है, पावन है, इतना अच्छा है, निर्मल है, जो सभी संसारी प्राणियों का कल्याण कर सकता है, तो ये सभी जगत में व्याप्त क्यों नहीं है? इसका पालन करने वालों की संख्या कम क्यों है? ज्वलंत प्रश्न है ये, हर व्यक्ति के दिमाग के ज्वलंत प्रश्न है। इतना अच्छा धर्म है तो फिर इसकी ओर आकर्षित क्यों नहीं होते? इसका उत्तर क्या है? हाँ? क्या उत्तर दे दें? इसमें कोई कमी है ये कहें, या कठिन है ये कहें, या बहुत सरल है ये कहें, क्या ये कहें कि इसको सब लोग भूल गए हैं ये कहें? दुनिया में यह इतना बड़ा ओरिजिनल धर्म, प्योर धर्म, फिल्टर्ड धर्म, इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं है? इसको लोग क्यों नहीं अपनाते हैं? लोग तो लोग हैं, लोग हैं, ये लोग चाहते क्या है मालूम? ये लोग चाहते हैं, लोग हैं, इनका अपर नाम लोग है, इनका दूसरा पर्यायवाची नाम लोग, और लोग बस इतना ही अंतर है। लोग को जीतना नहीं चाहते कोई, और ये धर्म ऐसा है कि जो लोग जीतता है उसी का ये हो जाता है धर्म। जैन धर्म किसका है? जो पाले उसका है। तो क्या पालना आपको? आत्मा में लोभ नहीं पालना। पालना क्या, इसका विचार मत करो। क्या नहीं पालना, इसका विचार करो। जैन धर्म किसका है? जो पाले उसका है। जो पाता है उसका है। और हमारे पास अनादि काल से जो पाया हुआ है वो क्या है? वो लोभ है। इस आत्मा ने अनादिकाल से लोभ पाया है, पाए हुए इस लोभ को भूल कर इसको हटाकर क्या करना है? कुछ पाना नहीं, पाने धर्म को पाना नहीं होता। धर्म का विरोधक तत्व जो आके बैठा है, विरोधक तत्व, उसको हटाना होता है। बचा क्या? धर्म बचा। अंधेरा है कमरे में, अंधेरे को हटाओगे और प्रकाश को पाओगे? अंधेरे को हटा सकते हो, प्रकाश को ला सकते हो? ऐसा करना हो तो पहले आपको अंधेरा हटा के रखना पड़ेगा और प्रकाश को लाना पड़ेगा। या तो ऐसा करना पड़ेगा, प्रकाश को लाना पड़ेगा और टोकरी भर करके उसको फेंक करके आना पड़ेगा अंधेरे को। प्रकाश सब जगह मौजूद है, प्रकाश सब जगह मौजूद है, सिर्फ अंधेरा जो है उसकी परिस्थिति क्या है, क्यों है, इसको समझना है। समझने के पश्चात उस अंधेरे को दूर करने का प्रयत्न करना है। अंधेरा क्या है, दूर करना है। तो अंधेरे को दूर करने का साधन क्या है, किसकी शरण में जाएं? तो प्रकाश के शरण में जाओ। प्रकाश के शरण में गए कि अंधेरा नहीं रहा, यही बात आत्मा में घटित हो रही है। आप आत्मा को पहचानने लग गए, आत्मा की बात करने लग गए, आत्मा को जान लिया और आत्मा को पहचान लिया, आत्मा में रहने लगे, विचरण करने लगे, तो लोभ को जाओ कहना पड़ता है? लोभ अपने आप खिसकता है। हम अपने स्वरूप में आ गए तो जो हमारा विरूप था वो अपने आप खिसक गया। सुबह सुबह प्रातः काल में सूर्योदय होता है, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि सूर्योदय के बाद ही अंधेरा हटता है। सूर्योदय के बाद ही अंधेरा दूर होता है, ऐसा है क्या? नहीं। सूर्योदय होने से पहले उदय का प्रभाव पहले से ही चलता है। उदय का प्रभाव, जैसे तीर्थंकर अभी जन्मे भी नहीं, आए भी नहीं, जहां है वहीं है प्रगति में, लेकिन उनके आने से पहले ही क्या होता है, रत्नवृष्टि होने लगती है। आए हैं क्या तीर्थंकर? नहीं आए। आने से पहले ही रत्नवृष्टि जैसी होती है, वैसा सूर्य प्रकाश से पहले ही अंधेरा जाना प्रारंभ कर देता है। इसका मतलब डरपोक कौन है? प्रकाश डरपोक है कि अंधेरा? देखो कितना डरता है, अंधेरा हमेशा डरता है। तो क्या आपका लोभ नहीं डरता है? लोभ भी डरता है, डरपोक है, उसका स्वभाव ही डरपोक है। लेकिन डरपोक इसलिए नहीं कि आप बिल्कुल मध्य रात्रि जैसे होके बैठे हैं, आपके हृदय में इतना अंधकार है, इतना अंधकार है, उदय मैं हो जाऊं, उदित हो जाऊं, अपने आप को पैदा कर लूं, ये विचार भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोभ बैठा हुआ है, वो डर सकता है, डरपोक ही है। लोभ को भगाना कोई कठिन बात नहीं है। क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, आत्मा की बात करो कहीं भी जाकर के, संसार की बात नहीं करना। महाराज के पास गए, आत्मा की बात ही सुनना, आत्मा की बात ही करना, धर्म की बात ही सुनना, धर्म की बात ही करना। हाला हाल धारी विषय तगे दिल, 5 बज गया तो भी कुछ नहीं करना, जहां मग्न है वहीं रहना। 5 बज गया पता नहीं चलना चाहिए, 6 बजे तक भी प्रवचन हो जाए पता नहीं लगना चाहिए, हम कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए, मग्न ही रहो। ऐसे ही मग्नता मग्नता, मैं 7 बजे तक भी प्रवचन दे दूं तो ऐसे ही बैठ जाए तो आपका लोग डरेगा क्या नहीं? लेकिन 5 बजते ही आपका लोग आपको डराने लगता है, क्या कर रहे हो, 5 बज गया ऐसे कब तक सुनोगे, महाराज हैं वो तो, उनको तो सुनाना है, तुम उठो चलो, तुमको ही डराने लगता है। लोग आपको जब डराता है तो आपको एकदम घड़ी की तरफ दृष्टि, लोग ही घड़ी की तरफ हमारी दृष्टि ले जाता है। तो हम क्या कहें, लोभ हमें चला रहा है, लोभ हमको, लोभ को हम चला रहे हैं, हम क्या हैं वर्तमान में है? लोभ ही हमें चला रहा है, हम लोभ को नहीं चला पा रहे हैं। और मुनि महाराज क्या कर रहे हैं, वो लोभ को चला रहे हैं। मैं जैसे चल रहा हूं वैसे तुम चलना, मैं जैसे आनंद भर आनंद से भर जाता हूं वैसे तुम भी आनंद से भरना। लोभ के लिए मुनि का उपदेश ये होता है। मुनि महाराज लोभ को ही उपदेश देते हैं, अपने लोभ को। जिस दिन आप भी लोभ को उपदेश देना प्रारंभ करेंगे, लोभ जाएगा नहीं जल्दी, पर उपदेश के वचन उसके कानों में जब जाएंगे ना, वो घबराने लग जाएगा, वो घबराने लग जाएगा। जैसे सूर्योदय से पहले 20 मिनट पहले ही प्रकाश आता है ना, तो अंधेरा कपने लगता है, सूरज आ रहा है, सूरज आ रहा है, पहले ही जा रहा है, वो स्थान छोड़ रहा है। धर्म के उपदेश को सुनने वाला व्यक्ति यदि धर्म के उपदेश को मनोयोग से सुन रहा है, रुचि से सुन रहा है, मग्न होकर सुन रहा है, कुछ करने के लिए सुन रहा है, अपने आप को बनाने के लिए सुन रहा है, तो लोभ डरेगा निश्चित है। क्या करना है, लोभ को डराना है कि खुद को ही डरना है? देखता हूं 5 बजे के बाद आप क्या करते हैं, कौन कौन जगह छोड़ता है ये देखूंगा। और तीर्थंकर भगवान कहते हैं इस अंधकार को हटाना, इस लोभ को हटाना, लोभ को डराना ही जैन बनना है। जैन किसका नाम, नई परिभाषा दे रहा हूं आज, जो लोभ को डराने में लगा रहता है उसका नाम जैन। और जिसके द्वारा लोभ डर जाता है और उस व्यक्ति के अनुसार लोभ चलने लगता है, तो उस व्यक्ति का नाम है जैन मुनि। और जिसने इस लोभ को चलाना छोड़ दिया है वो है जिनेंद्र भगवान। वो चलाते नहीं, हमको तो चलाना पड़ रहा है उसको, उसको नचाना पड़ रहा है, क्योंकि उत्पन्न हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। मुनि के अंदर अगर लोभ आ गया तो पुनः वापस आप जैसे बन सकते हैं कि नहीं, होता है, परंतु अरहंत भगवान नहीं। उनके अंदर लोभ प्रवेश ही नहीं कर सकता, लोभ घुस ही नहीं सकता। लोभ पर संपूर्ण विजय प्राप्त हुआ है, मोहिनी कर्म का क्षय करने के बाद ही वे अरहंत परमात्मा बने हैं। परंतु अभी मुनि लोभ कर्म का क्षय नहीं किया है, लोभ को उठने नहीं दे रहा है, लोभ को डरा रहा है मुनि, लोभ को धमका रहा है, तुम हमारे जैसे चलोगे तो तुमको तुमको जरा सुख में रखूंगा। और वो कहता है हमको सुख में रखना, जब तक कम से कम तुम हो तब तक सुख में रखना। अब हमारे कहने जैसे लोभ चल रहा है, हम उसके कहने जैसे नहीं चल रहे हैं। और जो मुनि महाराज बनने के बाद उसके कहने जैसे चलने लगते हैं स्वयं मुनि महाराज, तो लोभ मालिक हो गया, मुनि महाराज गुलाम हो गए। ये गुलामीपन, ये परतंत्रता, ये दुख के दिन कब आते हैं मालूम मुनि जीवन में? जब मुनि बनकर परिग्रही बन जाएंगे तो परिग्रह लोभ के बिना नहीं आता, बाह्य परिग्रह लोभ से ही आता है। जैन शासन में चर्चा है द्रव्यलिंग और भावलिंग की, उस संबंध में आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। कुछ लोग ये धारणा रख के बैठे हैं, ये समझते हैं कि द्रव्यलिंग का अर्थ होता है नग्नत्व। मुनि नग्न हो और पीछे कमंडलों के धारी हो तो वो द्रव्यलिंग है। नग्न वेश को द्रव्यलिंग समझते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान ने कहा वो द्रव्यलिंग नहीं। द्रव्यलिंग अलग है और नग्नत्व अलग है। नग्नत्व के आने पर द्रव्यलिंग आता ही है, ये गारंटी नहीं। क्या बता रहा हूं? अब मेन गणित आया है, एकाग्र होना पड़ेगा। मेन गणित की गणित का विषय बताया जा रहा है, अब एकाग्रता से सुनना। जहां नग्नत्व होता है वहां द्रव्यलिंग होता है क्या, आपसे पूछ रहा हूं। तो द्रव्यलिंग की उत्पत्ति के लिए हम क्या करें? महाराज आपको ही मालूम, आप ही इसके मालिक हैं, हम तो छोड़े नहीं और कभी विचार भी नहीं किया, हमसे क्या प्रश्न पूछ रहे हो? दस परिग्रह का त्याग, यह द्रव्यलिंग का सूचक है। ठीक है, सब परिग्रह मैं त्याग देता हूं और लास्ट में एक चीज रखता हूं, दस में से एक भी नहीं रखूंगा, दस में से एक भी नहीं रख रहा हूं, दसों छोड़ रहा हूं, चिंता मत करना, दसों छोड़ रहा हूं लेकिन एक रख रहा हूं, क्या? मोह नहीं, मोह नहीं, बाह्य वस्तु के दृष्टिकोण से ही मैं कह रहा हूं। मोह की बात तो भावलिंग की अपेक्षा से बाद में करूंगा मैं। सब कुछ मैंने छोड़ दिया, मोबाइल भी उसमें दस में आता है, ये मत समझना कि वो अलग से ग्यारहवा है। बहिरंग परिग्रह दस ही है, दस में ही आता है, मोबाइल दस में ही आता है, मैं ग्यारहवीं वस्तु को नाम दिला रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ नाम, वो क्या है? हम कहते हैं मंत्र तंत्र। जो मंत्र तंत्र जो मंत्र तंत्र आपके संसार को चला सकते हैं, आपको धन बढ़ा सकते हैं, आपको संसार से सुखी बना सकते हैं, इस प्रकार के मंत्र तंत्र को मैं पालन करने लग जाऊं, रखने लग जाऊं, देने लग जाऊं, तो प्रश्न उठता है ऐसे मुनि महाराज को हम बाह्य परिग्रह के त्यागी कहें क्या, नहीं कहें? हाँ, लोभ है। किससे लोभ है? मंत्र। मंत्र ये बाह्य वस्तु है क्या, लोभ है? लोभ अलग है, मंत्र अलग है। लोभ और मंत्र एक है क्या? नहीं है। ये ठीक है कि मंत्र को भी मैं लोभ से ही लूंगा, लोभ के बिना मंत्र नहीं ले सकता। मैं आपको मंत्र देने के लिए तब कोशिश करूंगा जब आपको दुखी देखूंगा। आप दुखी हैं तब मैं मंत्र लूंगा, इसका दुख दूर करो। तो दुनिया के लोगों के दुख को दूर करने के लिए मुनि महाराज क्या प्रयत्न कर सकते हैं? उनके पदानुकूल रहेगा ये? घर क्यों छोड़ा? दुनिया की चिंता करने के लिए या आत्म कल्याण के लिए? दुनिया में ही तो थे दीक्षा लेने से पहले, दुनिया की ही चिंता नहीं चाहिए हमको, ये कह करके सब कुछ सारा त्याग दिया और यहां आ गए। और यहां आने के बाद पुनः दुनिया याद आने लगी, यहां आने के बाद पुनः दुनिया याद आने लगी, और दुनिया को सुखी बनाने के चक्कर में मंत्र ग्रहण किया। इससे अच्छा था कि घर नहीं छोड़ते और मंत्र की भी जरूरत नहीं होती। बड़े बड़े उद्योग, फैक्ट्री और बड़े बड़े ताम झाम सर्कस खोल करके और वहां खूब धन कमा लेते, और ऐसा बेचारा जो गरीब आएगा तुम्हारे पास चक्रवर्ती की भांति दया करो, किमिच्छिक दान दे दो, दे सकते थे क्या? नहीं, दया ही करना है। कुछ वस्तु दे करके, धन दे करके, संपत्ति दे करके दया ही करना है। तो ऐसी दया करना श्रावक धर्म में तो है। चक्रवर्ती ने किमिच्छिक दान दे दिया। कब तक दिया? जब तक वो गृहस्थ अवस्था में थे। मुनि बनने के बाद दुखी लोग आते तो होंगे चक्रवर्ती के पास, फिर क्या कहते होंगे चक्रवर्ती उनसे? तुमने तो जिंदगी भर हमारा किमिच्छिक दान के माध्यम से हमारा भला किया, उद्धार किया, सुखी बनाया, अब आप मुनि बन गए, मुनि बनने के बाद भी ये काम करते रहो, हम तो आते जाते रहेंगे, हम तो ग्राहक हैं, आप तो दुकानदार मालिक हैं। कल्याण करते रहो, कल्याण करते रहो, हम कल्याण आपके, आपके सिवाय कोई शरण नहीं। धन नहीं है घर में, एक मंत्र दो, हे चक्रवर्ती तुमने दीक्षा ले ली, एक मंत्र दो। चक्रवर्ती ने दिया है कभी? तीर्थंकरों ने दिया, तीर्थंकरों के शिष्यों ने दिया? नहीं दिया। नहीं दिया इसका मतलब ये होना चाहिए मंत्र भी परिग्रह है, इसलिए नहीं दिया। अगर मंत्र परिग्रह न होता तो महावीर भगवान घर घर आकर के मंत्र बांटते। हे गृहस्थों, तुम क्यों दुखी रहते हो जब तक मैं हूं? मेरे मंत्र में ये ताकत है, ये लो मंत्र, नमोकार मंत्र, और इसको धन की सिद्धि की आशा से इसको जाप करना। कितनी बार करना ये मैं बताता हूं, उतनी बार ही करना। ज्यादा करोगे तो धन कम मिलेगा, कुछ गड़बड़ करोगे तो भी कम मिलेगा। जितने गिन करके करना है उतने ही गिन करके करना, और जिधर मुख करके बैठना है उधर ही मुख करके बैठना। इधर उधर नहीं देखना तो इधर उधर भी नहीं देखना, देख गए तो गया। ऐसी कोई विधि विधान तीर्थंकरों ने बताया? कई लोगों को मंत्र में विश्वास होता है, ये अंधविश्वास है क्या सही विश्वास है? मंत्र पर विश्वास करते हैं, ये नहीं समझते कि धन जो आता है हमारे पुण्य के उदय से आता है, कोई किसी वस्तु में, मंत्र में, किसी व्यक्ति में ये कोई शक्ति नहीं है, ये नहीं विचारते। यदि मंत्र पर विश्वास है तो कोई बात नहीं, खूब विश्वास करो, लेकिन मिलना चाहिए, गारंटी होना चाहिए। गारंटी है? नहीं है। यदि फिर भी कहते हैं गारंटी है तो मैं ही देता हूं, ले लो, धन प्राप्ति के लिए मंत्र देता हूं, ले जाओ, कोई बात नहीं, मैं कुछ समय के लिए परिग्रही हो जाता हूं, चलो हमारा काकल्याण हो जाए हो जाए, लेकिन मंत्र सत्य है क्या नहीं ये देखने के लिए जरा टेस्ट तो करें। लो ये मंत्र देता हूं, ले जाओ और जाप करो, दुकान में बिल्कुल नहीं बैठना है, मैं जब तक नहीं कहता हूं तब तक के लिए केवल मंत्र ही पढ़ना, दुकान में नहीं बैठना, दुकान पैसा नहीं देता, मंत्र ही पैसा देता है। और ऐसा बैठना, बहुत धन आएगा, विश्वास करना मैं जो कह रहा हूं, बहुत धन आएगा, एक साल तक संकल्प ले लेना, उठना नहीं, बाहुबली भगवान जैसे पर्वत पर जाना और बैठ जाना, ओम नमः सिद्धेभ्यः धन प्राप्ताय, नमः सिद्धेभ्यः, नमो अरहंतानम धन प्राप्ताय, नमो अरहंतानम धन प्राप्ताय, नमो सिद्धानम धन प्राप्ताय, नमो आयुर्यानम धन प्राप्ताय, पढ़ना एक साल तक। दुकान में पेटी आटी सब खाली करके जाना जाते समय, और एक साल के बाद आकर के देखना पेटी में कितने नोट आए हैं, नोट के बंडल आए हैं, कितने बंडल आ गए, ये कुछ नहीं। उस दिन कहोगे महाराज आपका मंत्र तो थोता मंत्र है, आपका मंत्र झूठा मंत्र है। नहीं, मेरा मंत्र झूठा नहीं हो सकता, जिस दिन आए थे तुम मंत्र लेने के लिए ठीक तिथि पर नहीं आए थे, इसलिए काम नहीं किया, हो गया। मंत्र देने वाला भी बड़ा होशियार। पुनः एक साल बैठो और अच्छी तिथि पर आकर के मेरा मंत्र ले जाना, जरा भूल गए थे, मैं भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुमको धन नहीं मिला, अन्यथा मेरा मंत्र झूठ नहीं हो सकता, धन देता ही है। अच्छी तिथि पर आओ, कोई बात नहीं, अगेन ट्राई, वंस मोर, वापस दूंगा अच्छी तिथि पर, गुरुवार के दिन आना, और तिथि हो, नक्षत्र अच्छा हो, अमावस्या अच्छा माना जाता है क्या, तो कोई बात नहीं, अमावस्या के दिन आओ, जो अच्छा लगे आपको। वो ज्योतिषी को पूछ के आना, उनको 100-500 दे देना, अच्छे दिन पर आना और ये मंत्र ले जाना, लेकिन धन मिलना चाहिए, आपको सुख मिलना चाहिए। मैं दे दूंगा, मंत्र भी दे दूंगा, खूब दे दूंगा, ले जाना मेरे से, मैं नहीं दे सकता हूं फिर भी दे दूंगा, लेकिन ये सिद्ध करके बताना है कि मेरा मंत्र तुमको धन देता है। करोगे सिद्ध? नहीं करोगी सिद्ध, फिर अभी तक क्यों किया जिद कि मंत्र सुख देता है, मंत्र सुख देता है, मंत्र सुख देता है, ये जिद तो हुआ, ये जिद व्यर्थ है क्या? नहीं व्यर्थ है। जिनेंद्र भगवंतों ने जो उपदेश दिया है उसमें विश्वास होना चाहिए। उन्होंने ये कहा, तुम्हारे पुण्य के उदय में ही धन संपत्ति प्राप्त होगी। पुण्य जिससे कमा सकते हो, पुण्य जैसा आ सकता हो, पुण्य के पुण्य का संग्रह जिस प्रकार से हो सकता हो वो काम करो, पर पुण्य की इच्छा से मत करो। पुण्य और पुण्य की इच्छा से पुण्य का काम करोगे तो पाप ही बंधेगा। अड़नाड़ काम मत करो, अड़नाड़ काम सोच सोच करके, समझ समझ करके, ज्ञान से करो, सोच के करो, विवेक से करो, करो विवेक से करो। विवेक से करोगे तो सब होगा। बोलो, पुण्य की प्राप्ति के लिए मैं धर्म करता हूं तो मैं पाप बांध रहा हूं क्या पुण्य बांध रहा हूं? पाप ही बांध रहा हूं। संपत्ति की प्राप्ति के लिए मैं धर्म करता हूं, दान देता हूं, फलाना कोई भी काम करता हूं धार्मिक, मैं पुण्य करता हूं क्या पाप करता हूं? पाप करता हूं। फिर मुझे क्या करना चाहिए? अपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो अपेक्षा नहीं करना चाहिए तो धर्म की भी अपेक्षा नहीं करना चाहिए, धर्म की अपेक्षा करनी चाहिए। पुण्य की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, धर्म की अपेक्षा करनी चाहिए। जो धर्म की अपेक्षा करता है वो पुण्य की अपेक्षा, पुण्य का अपेक्षी होता ही नहीं है। जिसके मन में धर्म के प्रति अनुराग है उसके प्रति कामना कुछ भी होती नहीं है। ऐसा सच्चा धर्म जो करता है उसके लिए पुण्यानुबंधी पुण्य लगता है, ऐसा कहा है। और वैसा जो धर्म करता है कामना से उनको पापानुबंधी पुण्य लगता है, ऐसा कहा है। पापानुबंधी पुण्य क्या है मालूम? पहला तो किया पुण्य धर्म की अपेक्षा रखते हुए, ये है पुण्यानुबंधी पुण्य। केवल धर्म की अपेक्षा से इकट्ठा किया, बाद में धन संपत्ति की लालसा उत्पन्न हो गई और उन्होंने मन में क्या विचार किया? ये विचार किया कि मेरा जो कुछ भी धार्मिक कार्य, त्याग, तप आदि मैंने किया, वो सारा का सारा मुझे उसी धन की उपलब्धि के लिए कारण बने। धर्म को दांव पर लगा दिया, तपस्या को दांव पर लगा दिया। अब पहला कौन सा पुण्य था उसके पास? उनके पास पुण्यानुबंधी पुण्य। अब क्या हुआ? वो सब कन्वर्ट हो गया। दूध की बहुत समय तक रक्षा की और जब दूध की इतने समय तक रक्षा हो गई तो दिल में क्या विचार आया कुछ पता नहीं, उसमें जरा सा खटाई डाल दो ये विचार आया और उसने खटाई डाल दी। अब दूध की रक्षा होगी क्या? तो दूध क्या बनेगा? दही बन जाएगा। दही यानी पापानुबंधी पुण्य और दूध यानी पुण्यानुबंधी पुण्य। तो महाराज आज शाम को जाकर के हम 1 लीटर दूध पिएंगे, पुण्यानुबंधी पुण्य लगेगा ऐसा? खाने पीने में भी पाप बंधता, पुण्यानुबंधी पुण्य की रक्षा करना चाहते हो तो पुण्य और पुण्य के फल में कामना त्यागो, ये कहा जिनेंद्र भगवंतों ने। धर्म करो, बहुत करो, बहुत ज्यादा करो या कम करो, इससे कोई मतलब नहीं, इसका कोई शर्त नहीं। धर्म जरा भी करते हो, 1% भी धर्म करते हैं तो उसके साथ क्या नहीं करो? फल की इच्छा नहीं करो। उसके साथ फल की इच्छा नहीं करोगे तो ये 1% धर्म भी पिवर पुण्य के फल को जरा भी कम वेशी नहीं करेगा। ये पुण्यानुबंधी पुण्य उदय में जब आ जाता है तो उसका पूरा फल जो पुण्य सामग्री है धन संपत्ति आदि 100% देगा वो, 100 का 100, 100 के 100 नंबर मिल गए एक धर्मात्मा को। इतिहास में जो भी आज तक चक्रवर्ती हुए हैं वो पापानुबंधी पुण्य के परिणाम से हुए कि पुण्यानुबंधी पुण्य के परिणाम से। पुण्यानुबंधी पुण्य का प्रताप रहता है वो, लेकिन हुंडा सर्प ने काल जो अभी कहा था इस काल दोष के कारण से 2 चक्रवर्ती नरक गए हैं। चक्रवर्ती बनने लायक पुण्य को संपादन किया था लेकिन उसने खटाई डाल दी थी लास्ट में जाकर पिछले भव में। और ध्यान रखना एक विशेष बात कह रहा हूं आज प्रवचन में, ये बहुत मजबूत पकड़ करके ले जाना घर, धर्म कैसा करना चाहिए मर्म समझ में आएगा। 63 शलाका पुरुषों में 9 नारायण और 9 प्रति नारायण ये नियम से नरक जाते हैं। चक्रवर्तियों का कोई नियम नहीं, वो चक्रवर्ती जो जा रहे हैं वो हुंडा सर्प निकाल के दोष से गए, अपवाद है, राजमार्ग नहीं है ये, अपवाद मार्ग से गए हैं। नहीं जाते हैं तो भी गए हैं, ये हुंडा सर्प निकाल का दोष है। पर ये तो नियम है, ये तो नियोग है। नारायण और प्रति नारायण ये दोनों 9-9 जन होते हैं चौथे काल में। 9 नारायण और 9 प्रति नारायण ये 9-9 18 लोग नियम से नरक जाते हैं। लोग पूछते हैं महाराज इसमें कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है शलाका पुरुष बनने के बाद भी महापुरुष कहलाने के बाद भी ये नरक जा रहे हैं, ऐसा कैसा नियोग है ये समझ में नहीं आता। साधारण लोग हम महापुरुष नहीं, हम शलाका पुरुषों में आते नहीं, जरा भी धर्म कर लेते हैं सम्यक तो धारण कर लेते हैं तो हम तो स्वर्ग जा रहे और ये नरक जा रहे, शलाका पुरुष बनकर नरक और हम साधारण प्राणी स्वर्ग। नरक तो हम सबको जाना चाहिए था, बेचारे वो शलाका पुरुष बन के जन्मे थे उन सबको स्वर्ग जाना चाहिए था या तो मोक्ष जाना चाहिए था, ये नरक जाते क्यों हैं? ये प्रश्न बहुत बार उत्पन्न होता है, स्वाध्याय जो करते हैं उनके दिमाग में बहुत रहता है ये प्रश्न। उसके लिए शास्त्र में ये सब व्यवस्थाएं बताई गई हैं, लेकिन वो सोर ध्यान नहीं जाता है, क्या करें? स्वाध्याय तो करते हैं लेकिन ध्यान सब तरफ जाता नहीं ना, आगे पीछे कथा क्या है क्या नहीं है, हिस्ट्री किसकी कैसी है। हम कथा पढ़ते तो हैं लेकिन कथा पर ध्यान नहीं देते, दृष्टि नहीं ले जाते। इनकी कथा उठा करके पढ़ लो, नव नारायणों की, नव प्रति नारायणों की, और वो जो मैं बता रहा था अभी चक्रवर्ती की जो 2 नरक गए हैं उनकी कथा उठा करके पढ़ लेना, पिछले भव में क्या थे और क्या किया था, पुण्य कमाया था तो किस प्रकार का पुण्य कमाया, उसको कमाने के बाद फिर उसने क्या क्या किया, इस ओर दृष्टि ले जाएंगे तो उसका उत्तर मिल जाता है। नरक तो वही जाता है जिन्होंने पापानुबंधी पुण्य कमाया है, धर्म बोध किया है, धर्मात्मा बनकर महाव्रती मुनि बनकर पुण्य कमाया है, लेकिन लास्ट में जाकर के निदान बंद अगर कर लेता है। निदान बंद का मतलब मैंने जो ये त्याग तपस्या धर्म जिंदगी भर किया है इसके इसका फल अगर कोई मिले तो मुझे यही मिले, मैं अगले भव में चक्रवर्ती बनूं। चक्रवर्ती बनने लायक पुण्य को तो पहले से ही कमाया था, देखो पुण्य नहीं कमाया था ऐसा नहीं, ये शुभम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, इनकी कथा ऐसी है। इन्होंने पुण्य तो कमाया था मुनि बन करके, त्याग तपस्या के माध्यम से उत्कृष्ट पुण्य कमाया था, कमा लेते हैं चक्रवर्ती बनू ये न कहने पर भी ये चक्रवर्ती बन सकते थे, बनने की योग्य बल था, सामर्थ्य था, सब कुछ था, लेकिन दिमाग में ये विचार आ जाता है क्या मैं इस त्याग तपस्या के परिणाम स्वरूप इसका जो पुण्य का फल मिलेगा आगामी काल में मैं चक्रवर्ती बनूं, मिलता है चक्रवर्ती बनूं कहने पर, चक्रवर्ती कोई भी बन सकता है, कोई भी का मतलब आप लोग नहीं उसमें, वो जो चक्रवर्ती बनने लायक पहला तो पुण्य कमा लेते हैं और मैं चक्रवर्ती बनूं ऐसा कहते हैं, वो क्या चक्रवर्ती नहीं बन सकते? निश्चित बन सकते हैं, काम तो वही किया है, उतना ही त्याग तपस्या की है, किंतु उस पुण्य को जो प्योर दूध के समान फिल्टर था, शुद्ध था, उसमें कामना की एक बूंद को, एक खटाई की बूंद को डाल दिया, अब क्या हो गया वो दैव। तो आपके जो पूर्व वस्तु थी वो आपके हाथ से गई क्या? वस्तु नहीं गई, वस्तु बदल गई, इतना ही है, वस्तु नहीं गई, वस्तु बदल गई, और बदल गई तो ऐसे बदल गई उसमें जरा भी अब क्या नहीं है, मिठास नहीं है, किसी भी कोने में मिठास नहीं है, वो मिठास नहीं है, रग रग में खट्टापन आया है और इस खट्टेपन को भोगना पड़ेगा। ये पापानुबंधी पुण्य कहता है चक्रवर्ती बनाने के बाद, तुमने तो मेरी कामना की थी, पुण्यानुबंधी पुण्य की कामना तुमने नहीं की थी, पुण्यानुबंधी पुण्य तो था ही तुम्हारे पास, लेकिन ये पसंद नहीं आया, तुमने जो कामना की चक्रवर्ती पद की, उस कामना की खटाई की एक बूंद के कारण से सारा का सारा ये बिगड़ चुका था दूध। अब तुम्हारे पास वस्तु तो है लेकिन वस्तु पूर्ववत नहीं है, जैसा है वैसा भोगना पड़ेगा। दूध पीने में मजा आएगा क्या? छाछ पीने में मजा आएगा? लेकिन शुभम चक्रवर्ती उनको छाछ पीना पड़ा, दूध खरीदा था, दूध को कमाया था, अगर जरा सावधान होते तो नरक न जाता, जरा सावधान होते तो चक्रवर्ती पद पाकर के भी नरक नहीं जा सकता था। जिसकी सत्ता में, जिस चक्रवर्ती के पास पुण्यानुबंधी पुण्य होता है वो कभी नरक नहीं जाता, या तो वो स्वर्ग जाएगा या तो मोक्ष जाएगा। और जिस जो चक्रवर्ती बनता है और पिछले भव में कामना की खटाई को डाल करके अपना दूध ले आता है, अपने पुण्यानुबंधी पुण्य को ले आता है, तो वो पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं आता, पुण्यानुबंधी पुण्य पापानुबंधी पुण्य होकर के यहाँ तक आता है, और वह कल्याण करने नहीं देता, वैराग्य होने नहीं देता, वो संसार परिभ्रमण करने का कारण बन जाता है, यही उसका खट्टापन है, यही उसका खट्टापन है, वो दूध का स्वाद लेने नहीं देगा। और मृत्यु के पश्चात दो चक्रवर्ती इसी कारण से नरक गए, नरक जाने का कारण पापानुबंधी पुण्य, और स्वर्ग और मोक्ष का कारण पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य जिसकी सत्ता में है वह वैरागी बन जाता है, वह बहुत बड़ा धर्मात्मा बन जाता है, और जिसकी सत्ता में पूर्व की पापानुबंधी पुण्य होता है उसको वैरागी नहीं होता। वैरागी वैराग्य नहीं होता। और ये नव नारायण नव प्रति नारायण, इनका भी हिस्ट्री निकाल करके देख लो, ये भी वही है, उनमें से एक है। धर्म करो लेकिन विवेक से करो। आप लोग भी धर्म करते हैं लेकिन अगर विवेक नहीं रहा और इसको नहीं समझा नहीं सुना तो विवेक तो रहता ही नहीं है। आज तक हमारे मंदिरों में जो कुछ भी श्रावक धर्म करते चले आए, सब कामना के पीछे, मैं दान देता हूं इतना संपत्ति मिले, संतान मिले, बच्चे मिले, वैभव मिले, मैं दान देता हूं मेरा रोग ठीक हो, धर्म करने के पश्चात क्या ये चीजें पूछनी पड़ती है? हाँ? कितनी दरिद्रता है, ओहो कितनी दरिद्रता, इतना बड़ा काम किया, निष्काम होकर के काम किया और मांगने बैठ गए। नहीं मांगने वाला कितना महान होता है, कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा धर्मात्मा कहलाता है, लेकिन वो बड़ा है या छोटा है यही मालूम नहीं है, यही विवेक नहीं है तो क्या कर बैठेगा? धार्मिक क्रियाएं भोग वैभव की प्राप्ति के लिए ही करेगा। और ऐसा व्यक्ति जो धर्म करता है भोग वैभव की प्राप्ति के लिए, वह कौन सा पुण्य कमाता है अब कहने की जरूरत नहीं है, पापानुबंधी पुण्य कमाता है। और वह पापानुबंधी पुण्य बांध करके जहां जाओगे, मान के चले कि आप भी एक मनुष्य बन गए, पुण्य तो किया ही था लेकिन दूध को बिगाड़कर छाछ बना के रखा था, वो छाछ का घड़ा तो साथ चलेगा। जा करके किसी अच्छे घराने में पैदा हो गए, धन संपत्ति वाले के घराने में, आपको गारंटी है वैराग्य नहीं होगा, भोग वैभव छोड़ने के भाव नहीं होंगे। पापानुबंधी पुण्य तुम्हें कहां ले जाने वाला है? नरक जाने वाला, ले जाने वाला है। वो कहता है तुम्हें वैराग्य दीक्षा ले लोगे तो मेरा क्या होगा, मुझे तुमने छांछ क्यों बनाया, मैं दूध था, मैं दूध नहीं हूं अब, मैं छांछ हूं, मेरे को तो पीना ही पड़ेगा, मेरा फल भोगना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। कर्म कहता है मैं पापानुबंधी पुण्य हूं, तुमने पाया है भोग लिया है और भोग भोग करके भोगों में व्यस्त रहे, त्याग के परिणाम तुम्हारे लिए इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि पापानुबंधी पुण्य के उदय में मिले हुए भोग संपत्ति को भोगने में तुम्हारे में लीनता रहेगी और वह लीनता जाएगी नहीं। शुभम चक्रवर्ती को समझाया गया तुम अकेले कहां जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, नहीं माना उसने। ये व्यक्ति कहता है देवता लोग मेरे आज्ञा को नहीं मानते, मेरी आज्ञा को नहीं मानते। और कौन देवता है जो आज्ञा को नहीं मानते, मुझको ये जो आम्र फल चाहिए थे उन्हें लेने मैं जा रहा हूं, ये कह करके सबको एक तरफ कर दिया और अकेला निकल गया उस व्यक्ति के साथ। कथा सुनी है आप लोगों ने, ये शुभम चक्रवर्ती की कथा एक बार पढ़ के आना, मैं जब उपदेश दूंगा ना तब मजा आएगा। पूर्वा पर कथा मालूम हो ना तो प्रवचन सुनने में बड़ा मजा आता है, कथा सुनने में इतना मजा नहीं आता। कथा पर कोई आधारित प्रवचन चल रहे हो उसमें बड़ा आनंद आता है। शुभम चक्रवर्ती के दिल में वैराग्य के भाव नहीं आए, उसने पूर्व जन्म में मुनि दीक्षा ली थी, त्याग तपस्या की थी, खूब पुण्य कमाया था, चक्रवर्ती बनने लायक पुण्य कमाया, अब बन भी गया, लेकिन एक ही भूल की थी, एक भूल के कारण से वो नरक गया है। कौन सी भूल है? नहीं, आपने उनसे बड़ी भूल की। नहीं, चक्रवर्ती बना पुण्य के फल से, पर नरक जाने का नियोग है क्या? नहीं है। ये नियोग क्यों बना? पाप, वो पूछ रहा हूं। और वो भूल नहीं है क्या? जो पुण्यानुबंधी पुण्य था उसको पापानुबंधी पुण्य के रूप में कन्वर्ट कर दिया, वो भूल नहीं था क्या? दूध को दही बना दिया, ये भूल नहीं है क्या? उस भूल के कारण से अभी जा रहा है। नियोग जो बना, ये नरक का नियोग नमोकार मंत्र के ऊपर पांव रखने से नहीं। पांव तो आप लोग भी रख रहे हैं आजकल, भगवान का अभिषेक होता है और उसके ऊपर ही घूमते रहते हैं, फिर तो सबको नरक जाना चाहिए आप लोगों को। तो क्या महाराज नमोकार मंत्र के ऊपर पांव रखने से नरक नहीं जाते? मैं कहां कह रहा हूं कि नरक जाते हैं, और ये भी कहां कह रहा हूं कि नरक नहीं जाते। जा सकते हैं, लेकिन मूलतः कारण नरक जाने का नमोकार मंत्र के ऊपर पांव रखने का कारण नहीं बना, वो सम्यक उसे चित हो गए। जब पांव रखने के भाव आ गए, सम्यक दर्शन से च्युत हो गए, और वो सम्यक दर्शन से च्युत होना, वहां छोड़ करके समुद्र में जाना, उस देव की बातों में आना, ये सब कुछ जो हो रहा है किस पुण्य के प्रताप से हो रहा है? ये पापानुबंधी पुण्य। मेन कारण क्या है? पापानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी पुण्य ऐसा काम करा देता है जो अविवेक पूर्ण है। वो कहता है धर्म भी करो तो कामना से करो, और कामना में डुबो देता। क्या रखा है? त्याग तपस्या में, मांगो मांगो मांगो, मांग करके धर्म करो। मांगने वाला धर्मात्मा नहीं होता, और जो नहीं मांगता वो अधर्मात्मा नहीं होता। नहीं मांगने वाला ही धर्मात्मा, और मांगने वाला अधर्मात्मा, इन दोनों का लक्षण ही ऐसा है। लोग भयभीत होकर के धर्म करते आज मंदिरों में। देवों से भयभीत रहते हैं। अगर इनकी उपासना नहीं करेंगे तो हमको देव मार डालेगा, या नुकसान पहुंचाएगा, या हमारी संतान को बिगाड़ देगा, हमारे पति को बिगाड़ देगा, और हम अपने पति के साथ अभी साथ भाव साथ देना चाहते हैं, साथ भाव साथ देना चाहते हैं। ये देव कुछ गड़बड़ करेगा तो फिर साथ कैसे होगा? ऐसी नारियां धर्म करती हैं आज जैन मंदिरों में। ऐसी नारियां ऐसे धर्म करती है। ये नारियां अज्ञानी हैं कि ज्ञानी हैं? समझदार धर्मात्मा है क्या? महान अज्ञान, अंधकार भरा हुआ है मन में, और इस अंधकार को ही भगवान महावीर ने कहा, आदिनाथ भगवान ने कहा, कुंद कुंद स्वामी ने कहा, और मैं भी उनकी परंपरा में मैं भी वही कह रहा हूं। ये अज्ञान अंधकार ही मिथ्यात्व है। जो आप देवों से डरते हैं, भयभीत रहते हैं, ये भय ही मिथ्यात्व है, और वो व्यर्थ का है। करते कुछ नहीं और मन में भय बनाए रखते हैं, ये व्यर्थ का भय ही मिथ्यात्व है। हटाओ इस भय के अंधकार को, बन जाओगे सम्यक दृष्टि। रत्नकरण सावकाचार्य में कहा है ना, भयाशा स्नेह लोवाच कुदेमागम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्यो शुद्ध दृष्टयः। रत्नकरण सावकाचार्य में कहा है, भय आशा स्नेह और लोभ, मन में भय रख करके जो धर्म करता है वो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। मन में देवता के प्रति, गुरु के प्रति, वीतराग भगवान के प्रति भय रख करके किया जाए क्या इनकी उपासना? भय रख करके नहीं, भक्ति रख करके करना चाहिए। और ये ज्ञान नहीं है, आज तक किसी ने इस ज्ञान को दिया ही नहीं। महाराज आप ये पहली बार ये सभी बातें सुना रहे हो, अभी हमारी आंखें खुल रही हैं। अगर आप न होते तो हम सब अंधकार में होते, हम कहां होते? तो फिर तो आप ही देखते कहां होते हम। प्रवचन सुनकर लोगों में जागृति आ रही है, ये खुशी की बात है। लोग मिथ्या तो छोड़ रहे हैं, खुशी की बात है। और ऐसे मिथ्यात्व को सबसे पहला छोड़ देना चाहिए। अपने मन में किसी भी प्रकार से कामना रख करके कोई धर्म का कार्य नहीं करना, पहली बात। और मंदिरों में किसी देवी देवता से डरना नहीं, वो कुछ नहीं करते। आपके दिल में केवल ये भ्रम है कि वो कुछ करते हैं। धर्मात्माओं का अनिष्ट करेंगे क्या देवता? सम्यक दृष्ट दर्शन धारण करेंगे, उनको नमन नहीं करेंगे, उनके प्रति कोई व्यवहार नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, उड़ी नहीं भरेंगे, तो क्या हमें धमकी देंगे वो कि तुमने इसे छोड़ दिया इसलिए मैं बहुत अनिष्ट करूंगा? ये क्रोधी हो जाए, बन जाएंगे? ये व्यर्थ का भ्रम मन में जो पाला जा रहा है, इसके कारण से मिथ्या तो नहीं छूट रहा है। और ये भ्रम दूर हो जाए ना कि इनसे नहीं डरना चाहिए, कुछ करते ही नहीं, ऐसा दिमाग में बैठ गया तो भय निकल जाएगा, और भय निकल गया तो आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। तुमको कौन मार सकता है, कौन अनिष्ट कर सकता है? किसी के पास ताकत नहीं। और देवता लोग, तुम मानते हो चक्रवर्ती के ये सेवक हैं, तो धर्मात्मा उनको क्या अनिष्ट करेंगे? चक्रवर्ती तीर्थंकरों के जो भक्त होते हैं, वे भक्त अपनी भक्ति करने के लिए तो वहां आए हैं, अपने कल्याण करने के लिए तो वहां आए हैं, और इन भक्तों को ही देख करके हम डर रहे हैं, तो आपको देख करके वो डरेंगे? आप भी मंदिर में आए हैं, क्यों आए हैं? भक्ति करने के लिए। वो भी आए हैं, क्यों आए हैं? भक्ति करने के लिए। दोनों भक्ति के करने के लिए भक्त आए हैं, और भक्त भक्त को देख करके डर रहा है, मुझे कुछ कर देगा, मेरे पति को कुछ कर देगा। कितनी मूर्खता है, कितनी अज्ञानता है। इतना ही ज्ञान है क्या आपके पास? अभी तक इतना ही रहा? भगवान ने ही कहा है, मेरे पास आने वाले देवों से तुम्हें नहीं डरना। हे श्रावकों सुन लो, हे श्राविकाओं सुन लो, बता रहा हूं, यहां पर तो देव तो बहुत आएंगे मेरे पास, वो अपने कल्याण के लिए मेरे पास आते हैं। और ये भक्त हैं भगवान नहीं, इनकी पूजा नहीं, इनकी उपासना नहीं, इनकी उपासना से तुम्हारे लिए भला होने वाला, आत्म कल्याण होने वाला नहीं। आत्म कल्याण यहां पूजा करो, वीतरागता की पूजा करोगे तो। बैठे हैं मुनि महाराज समोह शरण में, सब वीतरागी हैं, इनकी उपासना, इनकी पूजा करो। वीतरागी की उपासना, वीतरागी की पूजा करो, और ये कुछ कर देंगे ऐसा भय जो है वो कुछ करते नहीं, तुम्हारा भ्रम है कि वो कुछ करते हैं। इस भ्रम को दिमाग से निकाल करके आ जाओ मेरे पास। ये तीर्थंकरों ने कहा है क्या? नहीं, भय छोड़ो। तीर्थंकरों ने कहा, उनके वचनों पर विश्वास है आपको? अभी हो गया होगा विश्वास। पहला तो डरते थे, और भी डरने वाले बेटे होंगे इसमें, उड़ी भरना नहीं छोड़ सकते वो, क्योंकि सात भव तक पति का पत्नी बनना है। अज्ञानियों ने सिखाया, अज्ञानियों ने सीखा इन क्रियाओं को, बस इससे ज्यादा क्या है, इससे ज्यादा कुछ सत्य है चर्चा करने के लिए, कोई उसमें विषय कुछ भी नहीं। अज्ञानियों ने सिखाया, अज्ञानियों ने सीखा, चल रही है गाड़ी, अब ये नया ऐसी है छेद वाली नया, कहां डूबेगी कोई पता नहीं है, छेद है। महाराज कह रहे हैं साझे 5 बज गया, आपका लक्ष्य तो गया नहीं, ये बहुत अच्छा रहा, ये याद दिला रहे हैं, और भूल के बैठे हैं वो, तन्मय होकर के बैठे, 1.5 घंटा कैसे गया पता नहीं चला, और पता लगने नहीं दे रहा था, और ये हम मुझे कहने लगे। और कह रहे हैं कि अगली बार नहीं आओगे आप, ऐसा लेट करोगे तो नहीं आगे, नहीं आगे हमको क्या लेन देन, मैं तो जो प्रवचन 7 बजे तक देऊंगा, जिनको आना आओ, छोड़ना है छोड़ो। उनके प्रवचन में ऐसा ही होता है, दोपहर को शायद वो लोग लेट से छोड़ते हुए जल्दी छोड़, मुझे पता नहीं। मग्नता, वीतरागता, मन में लोभ नहीं जगा है तो समय की तरफ ख्याल नहीं रहता, मन एकाग्र तन्मय होकर के सुन रहा है तो ख्याल नहीं रहता। समूह शरण में सुनने वाले भव्य जीवात्मा जो उपदेश सुनते हैं ऐसे ही मग्न होते हैं, वो तन मन काया को भूलकर ऐसे मग्न हो जाते हैं, कितना समय निकल गया कोई पता नहीं। इसी समूह शरण में एकाग्रता आती है, समूह शरण एकाग्रता आती है, और वो आ रही है, वो आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, बड़ा हूँ आधा घंटा और है। वो हंसते हो भर बंद करता हूँ फिर,
हमारा बात में आ गए वो, हमारा बात में आ गए,
5:30 करेक्ट बज गया है, वो कोल्हापुर कब जाएंगे फिर, रात में नहीं, रात में तो नहीं जाना है, दिन में खाना है और दिन में ही जाना है, आने जाने में रात रात में गाड़ी में आना जाना उचित नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा धर्म को भी निभाना है, खुशी की बात है कम से कम 1.5 घंटे तो याद नहीं किया, किसी को याद आया क्या बोलो घर, झूठ नहीं बोलना, आया हो तो आया कहो, घर याद आया क्या, नहीं। परिग्रह ने बुलाया क्या, परिग्रह अचेतन वस्तु तुमको नहीं बुलाता, हम ही अपने स्वरूप से बाहर आकर परिग्रह का स्मरण करते हैं, अपने आत्म स्वरूप से जब हम बाहर आते हैं परिग्रह नजर में आने लगते हैं और हमें लिए हमारे लिए पापाश्रव का कारण बनते हैं। घर का प्रत्येक वस्तु पापाश्रव का कारण है, यदि स्मरण में आया और मोहित होकर के आप उसको अपनी नजर से देख रहे हैं, पापाश्रव का कारण, और वह नजर में नहीं आया, आप अपने आत्म तत्व को सुनने में लीन हो गए तो पापाश्रव नहीं, लगातार आपके आत्मा ने पुण्याश्रव किया है। पर इस प्रवचन को किसी भी कामना से अगर नहीं सुनते हैं तो आप पुण्यानुबंधी पुण्य कमाते हैं, और कामना से सुनने लग जाए तो पापन है। मैं जो विषय छेड़ दिया था वो अधूरा रह गया, द्रव्यलिंग और भावलिंग विषय बहुत दूर रह गया, अगला संडे जरूर सुनाऊंगा, अगला संडे जरूर इसी विषय पर रहेगा, विषय बीच बीच में कहीं भटक जाता हूँ, याद कर लेना महाराज विषय छूट रहा है तो मैं लाइन पर आकर के पूरी विषय सुनाऊंगा, द्रव्यलिंग क्या होता है, हमारे गुरु कैसे होते हैं, सच्चे गुरु का लक्षण द्रव्य लिंग और भाव लिंग दो से है, एक से नहीं, नग्नत्व से नहीं, केवल नग्नत्व द्रव्य लिंग नहीं है। दस वस्तुओं को छोड़ना बाहरी में, वो बाहरी नग्नत्व द्रव्य लिंग है। दस वस्तुओं को छोड़ने, वस्त्र छोड़ने पर ही नग्नत्व नहीं कहा जाता, बहिरंग दस वस्तुओं को छोड़ने पर वह नग्नत्व जो दस वस्तुओं से मुक्त है और पंच महाव्रतों का आचरण है वो कहलाता है द्रव्य लिंग। और भावलिंग क्या है? जिसको छोड़ा है उसके प्रति कभी इच्छा नहीं करेंगे, ये है भावलिंग। और विषय करूंगा इस विषय को, बहुत उलझा हुआ विषय है ये, लोग समझ नहीं पाते मुनि को, गुरु को नहीं समझ पाते, और न समझ पाने के कारण ही है वो भटक जाते हैं कहो, या आश्रव कर लेते हैं ये कहो, आश्रव का भी कारण बनता है, वहीं पर हमारा रास्ता भटक जाता है। देव, गुरु और शास्त्र हमारे ये आदर्श दर्पण हैं, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। कैसा दर्पण चाहिए? धूल चढ़ा हुआ मलिन चाहिए, या जिसमें हमारा मुख दिख सकता हो वो दर्पण चाहिए? स्वच्छ चाहिए, गुरु हमारे लिए स्वच्छ चाहिए। एक गुरु, एक ही गुरु पर्याप्त है। कहीं हम भटक जाते हैं, हम कहीं अविवेकी हैं, हम कहीं रास्ता से छूट रहे हैं, तो गुरु जागृत कर देते हैं। गुरु सत्य को नहीं दे सकते, सत्य के मार्ग को बता सकते हैं, सत्य की अनुभूति गुरु करा नहीं सकते। सत्य जीवन में अपने आप आता है जब सत्य मार्ग पर हम चलते हैं। देव, शास्त्र, गुरु कैसे रहना चाहिए? दोष मुक्त होना चाहिए। दर्पण आप लाते हैं घर में किस वास्ते? अपने को सुधारने के लिए कि दर्पण को ही देखने के लिए? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, बहुत चौड़ा है, इसको देखने के लिए लाते हैं क्या? उसमें अपने को देखने के लिए लाते, उसके भीतर अपने को देखने के लिए, उसको उसमें देख देख करके अपने मुंह को सुधारने के लिए, पाउडर, स्नो वगैरह सब, बाल वगैरह सुधारने के लिए लाते हैं। आज तक दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति कोई नहीं हुआ जो दर्पण को देखने के लिए दर्पण ला करके रखा, ऐसा कोई हुआ? तो हमारे सच्चे देव, शास्त्र, गुरु दर्पण के समान हैं, और उनके पास हम किस उद्देश्य से जाते हैं? अपनी मलिनता को, आत्मा के मल, कर्म मल को धोने के लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए उस आदर्श दर्पण के पास हम जाते हैं। ऐसा दर्पण एक चुन लो, एक ही दर्पण पर्याप्त है जो जिंदगी में सदा आपके मुख को दिखा देगा, केवल दिखाने का काम करेगा, लेकिन पहुंचने का काम करता है क्या दर्पण? नहीं। स्वच्छता की अनुभूति आपको होगी, आपके अपने हाथों से मलिनता को पहुंचने पर होगी, पर दर्पण पहुंचेगा नहीं। दर्पण आपके मुख पर क्या है इसको संकेत देता है, ये संकेत देता है, इस संकेत के बल पर आपको चलना है, सत्य की अनुभूति आपके आपको अपने बल पर करना है। ऐसे गुरु एक मिले, ऐसे देव, वीतरागी देव पंचम काल में जीवित तो नहीं है, प्रतिमा के रूप में उनकी हम पूजा कर रहे हैं, प्रतिमा तो है ही, साक्षात बोलते हुए देव तो मिलेंगे नहीं, शास्त्र भी बोलता नहीं, शास्त्र में भी जा करके हमें ही पढ़ना पड़ता है। गुरु बोलते हैं, शास्त्र से और गुरु से ज्यादा मोक्ष मार्ग में सहयोग किसका मिलता है आपको? गुरु का मिलता है। ऐसे एक सच्चे गुरु अपने जीवन में हो तो शास्त्र और भगवान दोनों जीवन में साकार बन जाएंगे गुरु के निमित्त से, और वो साकार बन गए तो गुरु का कर्तव्य खत्म हो गया, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। गुरु का कार्य वहीं तक होता है। समय हो गया,
एक मिनट बैठेंगे, एक मिनट बैठना है। आप लोगों ने इस तरह से सिर्फ रविवार रविवार प्रवचन सुन रहे हैं, इस तरह का अगर आपको लगातार प्रवचन सुनना है तो आपके ही अपने आध्यात्मिक पर्व आ रहे हैं, षोडश कारण पर्व और दशलक्षण पर्व। जिनको इस तरह आध्यात्मिक में अपने को अवगाहित करना, तो वे षोडश कारण पर्व में या दशलक्षण पर्व में 16 दिन घर छोड़ करके यही रुकेंगे, तो एक एक विषय पर आपको विशद प्रवचन सुनने को मिलेगा। दिन में दो दो प्रवचन, 16 दिन के 32 प्रवचन सुनने को आपको मिल सकते हैं। षोडश कारण के पूरा 16 दिन के दर्शन विशुद्धि पूरा उसी विषय पर प्रवचन रहेगा, विनय संपन्नता पूरा उसी पर प्रवचन रहेगा। जिस तरह आप आपका दर्पण अभी भी मलिन है, ये मलिनता के साथ आएंगे तो होगा नहीं। 16 दिन तक स्वच्छ दर्पण करके यही आप रुकोगे तो आपको और अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा। जीवन में कुछ तो एक चमत्कार आपको घटित होगा जो वह कल्याण के लिए कारण बनेगा। जिनको षोडश कारण पर्व दशलक्षण पर्व में भाग लेना और इस तरह यहाँ पूजन अष्टक करना और महाराज जी का उपदेश सुनना है तो यही रह सकते हैं। यहाँ के श्रावकों ने पूरी तरह से व्यवस्था की, चाहे यहाँ की हो चाहे बाहर के हो, सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, शुद्ध विहीर से पानी ला करके भोजन कराएंगे। सेवा करने वाले इतने लोग तैयार हैं, आप अपना कल्याण करो करके भोजन भी आपको यहाँ कराएंगे, वो भी अशुद्ध वाला नहीं, ताकि महाराज जी का प्रवचन अशुद्धता के तहत शुद्ध का कहीं दही न बन जाए, दूध दही न बन जाए। पूरा उन्होंने कहा कि हम कुएं से पानी लाएंगे और शुद्ध भोजन, मर्यादित आटा धान्य अनाज जो भी डालेंगे मर्यादित ही डालेंगे और 16 दिन तक के लिए आपकी व्यवस्था करेंगे। ऐसा करके उन्होंने तैयार किया। जिनको भी आना है रहने के लिए भी बहुत से घर खाली कर रखा उन्होंने, जैसे उनको भी मकान खाली रखा है और बाहर के भी रूम घर और धर्मशाला आदि ले रखा है, सब यहाँ उन्होंने बुकिंग कर रखा। तो जितने भी संख्या में आप आओ हो संभाल सकते हैं, और आपको आना है परिवार से आपका नाम नोंद कराए, आज से शुरू कर देना। ये 12 तारीख से शुरू होंगे षोडश कारण पर्व के और दशलक्षण पर्व के 16 तारीख के बाद। 16 तारीख के दिन जिनको आना है, 12 तारीख है तो 18 तारीख तक यहाँ पहुँचना और आपको जो भी रूम आदि देते हैं उसको आपको वहाँ सेट होना है, और 12 तारीख सवेरे से षोडश कारण का दर्शन विशुद्धि पूजन भावना पर पूजन और प्रवचन होंगे। और भाग लेना है तो आ सकते हैं, और कुछ पूछना है तो नंतर और पूछ लेना आपको क्या क्या चाहिए। सब प्रकार की व्यवस्था उन्होंने की। आते समय आपको अपना चद्दर वद्दर सोने के लिए नहीं लाते तो बहुत अच्छी एक चटाई लेके आओ, नहीं बनता है तो आप अपने लिए बिछाने के लिए एक चद्दर, ओढ़ने के लिए एक चद्दर ऐसा दो ला सकते। पूजन बर्तन जो है अष्टक के द्रव्य कमेटी की ओर से लाएंगे जरूर, लेकिन उसका कोई एक राशि रखा है। षोडश कारण पर्व का उन्होंने 7,500 रखा और दशलक्षण पर्व का 350 रखा। दोनों मिलकर के जिनको करना है उनके लिए 700 रखा प्रवेश भी, और उसमें वो अष्टक द्रव्य एक ही जगह पे अष्टक द्रव्य देंगे, इधर उधर का नहीं लाना, घर का नहीं लाना, यही स्वच्छ करके शुद्ध करके आपको देंगे, आपको लेना है। एक एक व्यक्ति को ऐसा लिया, सिर्फ षोडश कारण पर्व आपको वो आना है 500 रखा, और सिर्फ दशलक्षण पर्व का है तो 350 रखा, दोनों है तो 700 प्रवेश भी रखा है, और बाकी व्यवस्था वो यहाँ सब करेंगे। रूम आपको वही यहाँ दिखाएंगे और आपको वहाँ सेट होके रहना है। और एक पहली बात हुई, और जिनको नाम आज देना है आज ही देना शुरू करें। और कुछ पूछना है? ये है नोपी का विषय है, और सबसे ज्यादा ये कि आपको 16 दिन यहाँ रहने के लिए साधु की तरह यहाँ रह सकते हैं, रह करके आप महाराज जी के सानिध्य में रहकर क्या क्या साधु जीवन होता है वो सीखने को मिलेगा, और आपको जो भी शंका समाधान या इस तरह का प्रवचन आदि सुनना तो सुन सकते हैं। और उसमें जो आपको द्रव्य देंगे उसमें स्थापना पात्र आदि देने को उनका विचार चल रहा है और उसमें पूजन अष्टक की पुस्तक भी देने वाले हैं। समोसरण आदि की रचना यहाँ हो रही है। जहाँ भी दूर के बाहर के गाँव के लोग आ रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था, स्थानीय लोगों के लिए भी व्यवस्था यहाँ कर रखी है। तो आज नाम देना आप लोग दे सकते। प्रभु देव तुम्हारे